countrywide.
नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना बोस और आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक उन्नति का आधार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद, नमस्कार।
शिशिर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैल्यू एडिशन का मुख्य आधार माना जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था को किस तरह सशक्त बना रहा है?
किसानों की आय बढ़ानी हो तो ये जरूरत हो जाता है कि उनके फसलों के लिए उनको बेहतर मूल्य मिले, उनकी बेहतर कीमत मिले। अब अभी की स्थिति यह है कि हमारे देश में कई जो फसलें जब काटी जाती हैं, जब तैयार हो जाती हैं, तो उसके बाद उसमें नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? नुकसान होने के दो तीन वजह हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं कि जैसे भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने एक अध्ययन कराया था 2022 में, और उसमें पाया कि जैसे अनाज है उसमें लगभग 6% तक का नुकसान होता है। दाल की अगर हम बात करें तो लगभग 7.5% का नुकसान होता है। तिलहन की बात करें तो 7.5 यानी 7.5% का होता है। फलों की बात करें तो 15% तक का नुकसान होता है। देखिए, ये आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण है? ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आपके फसल का एक हिस्सा नुकसान हो जाता है तो आपकी जो फसल की कीमत मिलनी होती है उसमें पहले से ही पट्टा लग जाता है। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर सी बात है कि किसानों की आय बढ़ाने का जो सरकार का लक्ष्य है उसके ऊपर असर पड़ेगा। अब इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि जो कुछ भी हम पैदावार कर रहे हैं, चाहे वो अनाज हो, फल हो, साग सब्जियां हो, जितना नुकसान हो उसको हम कम करें, उसमें हम प्रसंस्करण के रूप में हम उसमें बढ़ावा दें। और इसी वजह से जब हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडिशन के, जब हम लोग बात करते हैं किसानों की आय बढ़ाने की, तो उनके लिए एक तरीका तो यह है कि आप जो उनको उनका जो उत्पाद है उसके लिए उसकी वाजिब कीमत दे रहे हैं, और जो उत्पाद बच जा रहा है या जो उत्पाद जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको खाद्य प्रसंस्करण के जरिए हम उसमें वैल्यू एडिशन करके बाजार में हम बेचें। एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किसान के उत्पाद जो कुछ भी बाजार में आते हैं उसमें यदि वैल्यू एडिशन होकर के, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शहद की हम लोग बात करते हैं, आप देखिए जैम जेली की बात करते हैं, तमाम तरह के फल से जैम जेली जो तैयार होते हैं, अब यदि बेहतर तरीके से प्रसंस्कृत होकर के बाजार में आएंगे, एक अच्छे ब्रांडिंग के जरिए आएंगे, तो किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा। किसानी को बढ़ावा देना है, और खासतौर पर जो युवा वर्ग है जो कि किसानी से किसी वजह से दूर हो रहा है उसको हमको लाना है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण किसानों के लिए एक आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है, क्योंकि उनके उत्पाद बेहतर स्वरूप में बाजार में जाते हैं।
शिशिर जी, सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में कितने प्रभावी साबित हुए हैं?
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो एक मांग आधारित योजना है, जिसमें होता क्या है कि अलग अलग तरीके की जो कृषि के लिए कहते ना कि पाद को या फसलों को हम खेत से बाजार तक कैसे पहुंचाएं, उसके बीच में कोल्ड स्टोरेज अगर बनाना है उसके लिए किस तरीके से इंतजाम किए जा सकते हैं, जो पूरा का पूरा मेगा फूड पार्क का कंसेप्ट है वो कैसे काम कर सकता है, क्लस्टर निर्माण कैसे किया जा सकता है, जो हम बाजार में सामान लेकर के जा रहे हैं, जो उत्पाद लेकर के जा रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरीके से हम बेहतर सुनिश्चित कर सके, और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी होता है कि मानव संसाधन जो है, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके अंदर किस तरीके से हम विशिष्टता को विकसित कर सके। तो ये सारा जो है वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जो है ये किया जाता है। तो अभी तक अगर आप देखें, मतलब 2025 तक की अगर हम लोग बात करें, तो करीबन 27 या 28 जो है वो परियोजनाएं केवल एक राज्य में है की गई। अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की बात करें पूरे देश भर में, तो वो आप समझ लीजिए कि काफी ज्यादा, वो 100 के ऊपर भी पहुंच जाती है, 100-150 के ऊपर पहुंच जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आज के दिन में जो संरक्षण, जो आप खेतों में आपका तैयार हुआ जो फसल बना या फल आए, उनका संरक्षण कैसे हो, तो वो कोल्ड स्टोरेज कैसे बने। हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज को लेकर के एक समस्या है, जितनी जरूरत है उतनी उपलब्धता नहीं है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत उस बुनियादी सुविधा को विकसित किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फसल है, आपकी जो फसल है, आपके जो फल सब्जियां हैं जिनका आप उत्पादन कर रहे हैं, जिनका पैदावार कर रहे हैं, वो बेहतर गुणवत्ता के साथ और वैल्यू एडिशन के साथ बाजार में पहुंच सकते हैं और उससे किसानों की आय बढ़ती है। तो ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की खास बात यह है कि फसलों के नुकसान को कैसे रोका जाए, फल सब्जियों के नुकसान को कैसे रोका जाए जब वो खेत में आने के बाद, तैयार होने के बाद जब बाजार पहुंचने वाले होते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी सुविधाओं में कमी है उस कमी को कैसे दूर किया जाए।
शिशिर जी, छोटे और सीमांत किसानों को खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने के लिए सरकार किन नीतियों और योजनाओं पर काम कर रही है?
एक जो हमारे यहाँ सर्वेक्षण हुआ, जनगणना कहना चाहिए, सर्वेक्षण नहीं, जनगणना के मुताबिक लगभग हमारे 85% किसान जो है वो छोटे और सीमांत किसान हैं। तो अपने श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि छोटे सीमांत किसान होते कौन से हैं। तो वो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, और 77 से 78% ऐसे किसान हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि सीमांत किसान है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। तो अब ऐसे किसानों की समस्या क्या होती है? ऐसे किसानों की समस्या ये होती है कि उनके लिए मंडी पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका जो उत्पाद होता है ना, उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत सीमित होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है, खाद्य प्रसंस्करण की जो योजनाएं हैं वो उनके लिए मदद बनकर के आती है। तो एक तरफ क्या होता है कि उनके उत्पादों को हम किस तरीके से मंडी पहुंचाए, तो वहां पर आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो उसमें काफी हद तक मदद करते हैं। दूसरी तरफ जो उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया, विविधीकरण किया, तो उन्होंने अलग अलग तरीके की फसलों को तैयार किया, या फल की जो है वो किसानी करी, या सब्जियों की किसानी करी, वहां पर वैल्यू एडिशन में जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की योजनाएं होती हैं, जैसा कि हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की, इस तरह की योजनाएं जो हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि इन छोटे और सीमांत किसानों के लिए बाजार पहुंचना आसान नहीं होता है, तो उनके उत्पादों को बाजार पहुंचाने में खाद्य प्रसंस्करण की जो है वो अहम भूमिका हो जाती है।
बिल्कुल, भारत के खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है और इसमें किन प्रमुख बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है?
अगर हम लोग बात करें, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मांग है, उसके अलावा यूरोपीय देशों में मांग है, अमेरिका में मांग है, इन देशों में हमारे जो कृषि उत्पाद जो है वो उनकी मांग काफी ज्यादा है। अब इन जगहों पर भेजने के पहले, इन जगहों के लिए निर्यात करने के पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, क्योंकि छोटा सा भी, जिसको कहते हैं ना, छोटी सी भी खामी पाई जाती है तो पूरा का पूरा जो कंसाइनमेंट है उसे वापस कर दिया जाता है। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हम बाहर भेज रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, तो वहां पर आपके लिए FSSAI जैसे भी संस्थाएं हैं वो काम करती हैं। फिर उसके अलावा स्थानीय स्तर पर कई जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करती हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की कई संस्थाएं हैं जो तकनीकी तौर पर मदद करती हैं। उसके अलावा अगर वित्तीय सहायता की बात करें तो हमारे लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, या स्टार्टअप स्टैंडअप स्कीम जो है, इन सब से वित्तीय सहायता मिलती है। तो इन सब का संयोग क्या होता है कि निर्यात की जरूरत के लिए घरेलू बाजार तो आप उपलब्ध करा ही रहे हैं, बाकी जो आपके पास सामान बचता है, जो उत्पादन ज्यादा हो गया है, पैदावार ज्यादा है, वो बाहर जा सके और बाहर के देशों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, वहां पर इस तरह की योजनाएं जो हैं वो काफी मदद करती है, जिनका संचालन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
शिशिर जी, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्या भूमिका है?
एक महत्वपूर्ण तथ्य भी हो जाता है कि कई जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ जो उपभोक्ता है वो ब्रांड को लेकर के बहुत सजग होते हैं, और एक खास तबके का उपभोक्ता कहना चाहिए, सामान्य उपभोक्ता नहीं, एक खास तबके जो होता है उपभोक्ता का, जिसको वो ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार होता है एक खास ब्रांड के लिए। अब वो ब्रांड बाहर से आ रहे हैं, वो ब्रांड हमारे यहाँ आयातित हो रहे हैं, अब उसकी जगह पर हमारे देश के ब्रांड उसी ब्रांड को रिप्लेस कर सके जो हम अभी तक आयातित कर रहे थे। तो उसके लिए जरूरत क्या है कि आपकी गुणवत्ता बेहतर हो, उसकी जो है मार्केटिंग अच्छे से की जाए, लोगों के जहन में पहुंचे। अब ये सब चीजों के लिए जैसा मैंने अभी कुछ योजनाओं का आपसे जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्टैंडअप स्कीम्स हैं, इस तरह की योजनाओं के जरिए मदद जो दी जाती है वो इन छोटे किसानों के लिए, इन सीमांत किसानों के लिए एक संगठित तौर पर या सहकारिता के तौर पर अपना व्यवसाय खड़ा करने में मदद करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में फलों की अच्छी खासी पैदावार होती है। उन पैदावार को बाजार तक लाने के लिए जो आयातित ब्रांड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम एक तरफ मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे रहे होते हैं और आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दे रहे होते हैं। क्योंकि अंत में हमको क्या चाहिए होता है कि हमारे देश में वो सामान बने जिसके लिए निर्भरता हमारे दूसरे देशों पर थी। तो इस तरह की जो व्यवस्था अपनाई जाए वहां पर आपके लिए मेक इन इंडिया हो या फिर जो हम आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट की बात करते हैं उसमें काफी हद तक मददगार साबित होगा।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल होगा आपसे कि निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की भागीदारी इस सेक्टर में कितनी बड़ी है और सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और क्या क्या कर रही है?
देखिए, निजी क्षेत्र को क्या चाहिए? निजी क्षेत्र को दो तरीके से मदद चाहिए। एक तो ये होता है कि उनके लिए कर व्यवस्था में हम किस तरह की सहूलियत दे सकते हैं। तो कृषि के मामले में हमारे यहाँ कई जगह पे आप वहां पर देखते हैं कि कर व्यवस्था में काफी सहूलियतें दी गई हैं। निजी क्षेत्र को अगर कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना है, निजी क्षेत्र को एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करनी हो, इन सब चीजों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। दूसरी तरफ जो स्टार्टअप की हम लोग बात कर रहे हैं, आज के दिन में स्टार्टअप जो है वो सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कम होता है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कृषि से जुड़े हुए उत्पादों के मामले में स्टार्टअप आ गया है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं, बिहार में जैसे मखाने को लेकर के या बिहार में मशरूम को लेकर के वहां पर कई स्टार्टअप्स आए हैं जो उसमें काफी काम कर रहे हैं। तो उनको कर में भी रियायत मिलती है, उनके लिए बाजार पहुंचाने का रास्ता भी खुलता है। उसके अलावा जैसे जेम है, जेम के ऊपर भी उनको अपने सामान बेचने की सुविधा मिल जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो हमारे स्टार्टअप और निजी क्षेत्र को मदद करते हैं और उनको उन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां पर वो अभी तक नहीं जाते रहे।
जी शिशिर जी, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए किन नियामक सुधारों पर काम किया जा रहा है?
पहला काम जो FSSAI लगातार कर रहा है वो ये है कि खाद्य उत्पादों के मामले में, खासतौर पर जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद हैं, वो सही गुणवत्ता के साथ बाजार में आए। क्योंकि बाजार में उपभोक्ता को अगर आप बड़े ब्रांड की जगह पर स्थानीय ब्रांड या इम्पोर्टेड ब्रांड की जगह पर लोकल ब्रांड को अगर आप देना चाहते हैं तो लोकल ब्रांड में क्या चाहिए, कीमत भी चाहिए और गुणवत्ता भी चाहिए। तो वहां पर FSSAI की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और वो काफी काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत हैं, वो संस्थाएं जो हैं वो तकनीक के तौर पर मदद करती हैं ताकि ये जो छोटी जो उद्यमी है वो बेहतर गुणवत्ता के साथ बाजार में बेच सके। तो ये कुछ कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। और उसके अलावा सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, स्थानीय स्तर पर भी चलाई जाती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाई जाती हैं, जिससे कि प्रसंस्कृत पदार्थ जो है वो बेहतर गुणवत्ता के साथ बाजार में आए।
शिशिर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आने वाले वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सरकार का विजन क्या है और ये कृषि को एक मजबूत आर्थिक शक्ति में कैसे बदल सकता है?
देखिए, आज के दिन में जैसा हमने शुरू में चर्चा किया था कि हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि कृषि में होने वाले जो पैदावार के बाद, कटाई के बाद, तैयार होने के बाद नुकसान को कम कैसे किया जाए, और वो कम करने में खाद्य प्रसंस्करण की सबसे अहम भूमिका है। सरकार इस नीति को, इस तथ्य को महत्व देती है और यही वजह है कि खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के एक अलग हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है, चाहे वो रेगुलेटरी स्तर पे जैसे FSSAI की हम लोग बात करें, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अलग अलग राज्यों में इस पर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सरकार की सोच है, सरकार का जो नजरिया है वो ये कि किसानों की आय बढ़ानी है तो सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक कृषि उत्पादों को ही बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं उसमें मूल्यवर्धन कैसे किया जाए, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, और वो खाद्य प्रसंस्करण के जरिए संभव हो सकता है। यही सरकार की नीति है। और जैसा किसानों की आय दोगुनी करनी है, दोगुनी से आगे बढ़ानी है, खाद्य प्रसंस्करण उस मामले में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। ये सरकार की सोच है और यही पूरी सरकार की कृषि नीति का एक हिस्सा भी है।
और इसी विजन के साथ हम कंट्री वाइड का ये संस्करण समाप्त करते हैं। शिशिर जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जी धन्यवाद, नमस्कार।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार। कंट्री वाइज।